ये जो प्रस्तुति हो रही है उसको उसका आगे का सोपान, ये मायापुर धाम के, ये मायापुर का दृश्य है। और आप देख रहे हो यहां नीले वस्त्र पहने हुए नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवद्वीप मंडल की परिक्रमा करा रहे हैं। तो उस नवद्वीप में चार संप्रदाय के आचार्य जब जब वे धरातल पर थे, चार वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज आचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारकर, विष्णु स्वामी, तो जब जब वे थे दक्षिण भारत में वो प्रकट हुए या उन्होंने अवतार लिया, ऐसा भी कहा जा सकता है। भगवान के भक्त भी अवतरित होते हैं या अवतरित होंगे, ऐसी भविष्यवाणी वैसे भविष्य पुराण में है। ये चार संप्रदाय के आचार्यों के प्राकट्य की, जन्म की भविष्यवाणी भविष्य पुराण में आप पढ़ सकते हो। मैंने कल ही पढ़ा वैसे इस बात को। तो वे जब भी थे वे जाया करते थे तीर्थ यात्रा में, और नवद्वीप मंडल पहुंचते थे तो वहां उनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होता था। ये 500 वर्ष पूर्व की बात है। चैतन्य महाप्रभु तो प्रकट हुए 500 और कुछ ऊपर 31 वर्ष पहले, लेकिन उसके पहले चैतन्य महाप्रभु के प्रकट लीला के प्राकट्य के पहले ही आचार्य हुए हैं चारों आचार्य। और जब जब वे नवद्वीप धाम जाते तो तब तब उनको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दर्शन देते, और फिर नवद्वीप धाम महात्म्य नामक ग्रंथ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा और वैसा किया भी कि ये चारों संप्रदाय के आचार्यों से या संप्रदाय से उन्होंने दो दो सिद्धांत ग्रहण किए, यह उनकी दो बढ़िया कुछ वैशिष्ट्य है उसको अपनाया और अपने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उसको स्वीकार किया और उसका प्रचार प्रसार और उस पर अवलंबन करना भी प्रारंभ किया। तो वे दो दो सिद्धांत कौन से हैं? तो श्री संप्रदाय से उन्होंने अनन्य भक्ति और भक्तजन सेवा अपनाई। मध्व संप्रदाय से, जैसे आप देख ही रहे हो, स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है, केवल अद्वैत का निरसन किया उन्होंने, अद्वैतवाद का खंडन करने वाले वैसे चारों संप्रदाय का आचार्य है, किंतु मध्वाचार्य ने विशेष योगदान उनका रहा ये अद्वैतवाद के खंडन में। और नित्य कृष्ण मूर्ति सेवा, विग्रह की आराधना, ये भी ब्रह्मा मध्व संप्रदाय का वैशिष्ट्य है, उसको भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने संप्रदाय में अपनाए। रुद्र संप्रदाय से उन्होंने तदीय सर्वस्व भाव और राग मार्ग को अपनाया, और कुमार संप्रदाय से एकांत राधिका आश्रय और गोपी भाव को अपनाए। अभी इसको आपको ऐसे स्वीकार करना होगा, अभी हम विस्तार से नहीं समझा सकते एक एक बात को। ओके, व्हाट इज दिस? तो अब आगे बढ़ते हैं। साधना भक्ति जो हम करते हैं, तो आप देख रहे हैं, एक तो हर संप्रदाय की जो अच्छी अच्छी बातें, दो बेस्ट बातें, सिद्धांत या उनका कोई विधि विधान को चैतन्य महाप्रभु ने अपने संप्रदाय में उसको मिलाया, तो हुआ कि नहीं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय सर्वोत्कृष्ट। जो जो अच्छी बातें थी, उत्कृष्ट बातें थी, मान लो वो अपने संप्रदाय में उसको स्वीकार किए और इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय समृद्ध हुआ, अधिक और वैभवशाली हुआ, अधिक पूर्ण हुआ, सर्वोत्कृष्ट हुआ, ये समझने की बात है। ओके, तो आगे बढ़ते, साधना भक्ति के दो प्रकार है, वैधि साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति। ये भक्ति रसामृत सिंधु पर आधारित बात है, वैधि साधना रागानुग साधना, रागानुगा साधना भी है, इसमें तो कई सारा छिप जाता है। तो अब और संप्रदाय तो हुआ वैधि साधना में लगे रहते हैं और गौड़ीय वैष्णव कौन सी साधना करते हैं, रागानुग साधना। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है, रागानुग साधना। हरीश, तो श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में चिंतन कर रहे हैं, देख रहे हो, उनको प्रकट होना है धरातल पर, तो प्राकट्य के पहले भगवान सोच रहे हैं। या सम क्वेश्चंस, या प्रश्न है, विचार कर रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने विचार किया, प्रेम रस निर्यास करित आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करित प्रचारान। ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला 4:15 में लिखा है, और उसे चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा। तो कृष्णा गोलोक में प्राकट्य के पहले सोच रहे हैं, मैं क्या करूंगा, प्रेम रस का मैं आस्वादन करूंगा और राग मार्ग भक्ति का मैं प्रचार करूंगा, ऐसा कृष्ण ने सोचा गोलोक में, और ऐसा सोच के ही वे प्रकट हुए। वो प्राकट्य है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। भगवान सारा प्लानिंग करके प्रकट हुए। अब मैं जब प्रकट होऊंगा तो मुझे प्रेम रस माधुर्य लीला का आस्वादन करूंगा और राग मार्ग भक्ति का अवलंबन, आचरण और प्रचार भी करूंगा। अरे अरे, दिस इज हाउस। तो चैतन्य महाप्रभु ने, ये पुनः चैतन्य चरितामृत की बात है, ये तो बातें उन्होंने सनातन गोस्वामी के साथ वाराणसी में जब संवाद हो रहा था, चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी, 2 महीने बातें हो रही थी। कृष्ण अर्जुन के मध्य में तो कुछ 45 मिनटों तक चर्चा हुई, लेकिन वही कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब बने हैं तो सनातन गोस्वामी को उपदेश दिए, 2 महीने उपदेश कर रहे थे। ये उपदेश सनातन शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध है, सनातन शिक्षा, तो शिक्षा के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी या सनातन गोस्वामी से कहा, जब हमारा ज्ञान ऐश्वर्य से मिश्रित होता है, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत, चैतन्य महाप्रभु ने कहा जब ऐश्वर्य ज्ञान से प्रेम जो है वो शिथिल हो जाता है और उसमें मुझे प्रीति नहीं है, तो भगवान महान है, भगवान का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य ज्ञान, वैकुंठ के भगवान ऐश्वर्य से पूर्ण होते हैं, हरि हरि, तो उसे जीव का भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कम होता है, प्रेम थोड़ा ढक जाता है, कुछ बैक सीट लेता है, या प्रेम का कुछ दमन होता है, क्योंकि भेद भेद का अनुभव करता है जीव, और भगवान इतने महान है और मैं इतना लहान हूं, मैं इतना छोटा हूं, तो फिर वो नमस्कार वगैरह करते रहता, दूर रहता है, थोड़ा प्रेम नहीं करता, सेवा तो करता है, दास बनता है, तो फिर उसमें भगवान से प्रेम होता है किंतु मात्रा बहुत कम होती है, और भाव ऐश्वर्य भाव, ऐश्वर्य माधुर्य औदार्य ऐसी बातें हैं। तो वैकुंठ में ऐश्वर्य, वृंदावन में माधुर्य और नवद्वीप में औदार्य। मोर पुत्र मोर सखा मोर पति, यही भाव यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। तो भगवान को ये अच्छा लगता है जब कोई भक्त जीव ही होता है, वो जब जब समझता है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ऐसा सोच के भी आए थे, जब गोलोक में थे ऐसा सोचे थे, अब सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं वही बात, कि जब जब जीव सोचता है, भक्त सोचता है कि मोर पुत्र, भगवान मेरे पुत्र है, भगवान मेरे सखा है, भगवान मेरे पति है, तो ये जो भाव है ये शुद्ध भक्ति है, ये प्रेमा भक्ति है, ये प्रीति से प्रेम से कृष्ण प्रेम जो हम कहते हैं उसे वो परिपूर्ण है ये भाव। ओके, यस, मैं थोड़ा स्क्रीन, तो श्रील प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे और श्रील प्रभुपाद की सारी तैयारी हो रही थी, किसकी तैयारी, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना, और फिर यह कृष्ण भावना का आस्वादन और उसका प्रसारण, सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम, इसकी तैयारी जब श्री प्रभुपाद कर रहे थे राधा दामोदर मंदिर में, उसके पहले भी किए कर ही रहे थे और अब राधा दामोदर मंदिर में आके पधारे हैं, तो वह श्री रूप गोस्वामी का वे दर्शन यहाँ कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी के समाधि पास में ही है, रूप गोस्वामी का भजन कुटीर भी उनकी खिड़की में से देख सकते थे प्रभुपाद, वैसे ये प्रभुपाद का रसोई घर है जहाँ से दिखते थे यहाँ समाधि और भजन कुटीर। तो श्रील प्रभुपाद ऐसा सारा चिंतन किए और श्रील प्रभुपाद इस प्रकार स्वयं ही रूपानुगत थे, रूपानुगत बने और वही सारे तात्पर्यों में भी ये रागानुग भक्ति और गौड़ीय वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता इत्यादि इत्यादि बातों का उन्होंने संकलन भी किया, ऐसे भावार्थ भी लिखे ताकि भविष्य में गौड़ीय वैष्णवता की सर्वोत्कृष्टता का अनुभव सारा संसार करे और उसका प्रचार और प्रसार हो। तो यह है गोलोक। तो गोलोक सर्वोपरि है। गोलोक नामनि निजधामनि तले च तस्य चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्पवृक्षलक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये गोलोक है, श्री कृष्ण का निवास स्थान है। गोलोक के निवासी है गोलोक नामनी निजधामनी। निजधाम कृष्ण का निज धाम है गोलोक। और गोलोक के ही दो विभाग है, एक है वृंदावन एवं मायापुर। मायापुर को श्वेतद्वीप धाम भी कहते हैं। श्वेतद्वीप एक अलग से श्वेतद्वीप धाम भी है जहाँ क्षुरोदक्षय विष्णु रहते हैं, लेकिन मायापुर को भी श्वेतद्वीप कहते हैं। तो ये दोनों वृंदावन और मायापुर गोलोक में स्थित है, या गोलोक के ये दो विभाग है। और ये सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है, क्योंकि कृष्ण ही सर्वोपरि है और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी सर्वोपरि है। और उनका धाम भी माधुर्य धाम, प्रेम से भरपूर, प्रेम की लीला कथा व्यवहार यहाँ होता है। और स्थानों पर तो ऐश्वर्य की कथा होती है या माधुर्य की कथा, माधुर्य लीला। इसीलिए गोलोक सर्वोत्कृष्ट है। बाकी तो सभी वैसे भी फिजिकली कहो नीचे ही है, निम्न है। देवी धाम, फिर महेश धाम, शिव जी का महेश धाम है, महेश धाम, शिव जी का महेश धाम, या उसे सदाशिव का महेश धाम। आधा आधा प्राकृत जगत में, आधा अप्राकृत जगत में है। और फिर हरिधाम, जहाँ भगवान के कई सारे विस्तार अवतार वहाँ के निवासी हैं। फिर साकेत राम का अयोध्या धाम, वैकुंठ से भी ऊंचा है और उससे ऊंचा है गोलोक धाम। ये सब है, अब है, जैसे हम बात कर रहे हैं इस समय, ये सब है। यानी कि था या ये कोई कोरी कल्पना है, ऐसी बात नहीं है, ये सब है, वर्तमान काल में है। और वह केवल वर्तमान काल ही चलता है, वह भूतकाल भविष्य नहीं होता। तो वर्तमान में वो सब स्थित है। रस विचार गौड़ीय वैष्णवता की ये सर्वोत्कृष्टता के दृष्टि से रस विचार ऐसे। और या धर्म के क्षेत्र में रस पर विचार होता ही है, सारे संप्रदायों में रस का विचार है। रस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। किंतु गौड़ीय वैष्णवों की जो समझ है और गौड़ीय वैष्णव जिस रस का स्वादन करते हैं और इसका प्रचार भी करते हैं, वो रस कुछ ऊंचा है। तो यहाँ आपके समक्ष तो ये यहाँ तो पांच रस के रस का उल्लेख हुआ है, इसके अलावा और भी सात है, उनको गौण कहते हैं और ये प्रधान या मुख्य रस है। पांच रस शांतदास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य। तो हर एक का थोड़ा लक्षण, ये भी चैतन्य चरित अमृत मध्य लीला, ये भी चैतन्य महाप्रभु का ही उपदेश सनातन गोस्वामी को जब से वार्तालाप हो रहा है। आपके पास चैतन्य चरित अमृत होना चाहिए, रखिए, नहीं तो कैसे आप गौड़ीय वैष्णव, आपके पास चैतन्य चरित अमृत नहीं है। चैतन्य चरित अमृत का पूरा सेट भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में, हिंदी में, कई भाषा में, मराठी में कंप्लीट, मराठी में भी। अब चैतन्य चरित अमृत कंप्लीट सेट उपलब्ध है, तो अपने घर में रखो, केवल रखना ही नहीं, इसका अध्ययन करो, तो फिर ये सब रहस्य का उद्घाटन होगा। तो ये चार्ट कुछ कल्पना से नहीं बनाया है, इसका आधार है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, सनातन गोस्वामी को दी हुई शिक्षा। तो शांत रस में कृष्ण में निष्ठा होती है, तृष्णा का त्याग होता है। तृष्णा का त्याग मतलब वैराग्य होता है। मतलब कृष्ण में आसक्ति और संसार में अनासक्ति, राग विराग की बात है। तो कृष्ण निष्ठा तो आप जैसे देख रहे हो, सभी रसों में कृष्ण निष्ठा मिलेगी आपको, और तृष्णा त्याग भी सभी में है। इट इज लाइक दैट, इट्स ईजी। तो दास्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण निष्ठा तो होती ही है। तृष्णा मतलब मांग या चाह या संसार के चाय नहीं, आशा पाश शतैर बद्धई वाली बात है। आशा के पाश का त्याग, और दास्य भाव में सेवा प्रारंभ होती है, सेवा भाव। शांत रस के भक्त केवल शांत ही रहते हैं, जस्ट वो रहते हैं, वो कुछ करना नहीं चाहते भगवान के लिए, या इच्छा तो होगी या विचार तो करते होंगे लेकिन आगे कुछ कदम नहीं उठाते, कुछ हिलते डुलते चलते घूमते फिरते भगवान के लिए ऐसा कुछ नहीं करते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भी नहीं करते। लेकिन दास्य भाव में सेवा की प्रधानता, या सेवा एडिशनल हो गई शांत रस से। शांत रस और दास्य रस में अंतर सेवा का है। साख्य रस ये तीनों भी है ही, कृष्ण निष्ठा, तृष्णा त्याग, सेवा, और विश्रम्भ। विश्रम्भ कहते हैं, विश्रम्भ मतलब जीव और भगवान में कुछ ऐक्य या साम्य समानता है, इसका अनुभव करता है जीव, ऐसा उसका भाव होता है। तो यही पर आ गया फिर, अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद, भेद है और भेद नहीं है। तो जीव अनुभव करता है, अभेद का अनुभव करता है, मुझमें और भगवान में भेद नहीं है, मैं उन्हीं का हूं, मैं उन्हीं का तो हूं, तो भेद नहीं रहा फिर। अपनापन या लाइक दैट विश्रम्भ, विश्रम्भ सख्य। फिर वात्सल्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये चारों सख्य रस के सारे लक्षण हैं, और एक एडिशनल हो जाता है पालक ज्ञान। पालक समझते हो, इसका पालक कौन है? जब स्कूल में बच्चे को एडमिट करते हैं मराठी शाला में तो पहले पालक, पालक पालका से नाव का है, कौन पालक, कौन पालन पोषण करता है तुम्हारा, पालक। तो जीव सोचता है भगवान का मैं पालक हूं, क्या जीव सोचता है, जीव में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, जैसे भगवान ने ऐसा वो भाव दिया होता है ऐसा, कि भगवान का लालन पालन मैं करता हूं, नहीं तो और कौन करेगा, इसको सुधारना तो मेरा ही तो फर्ज है। ऐसे जगन्नाथ मिश्र भी कहते थे, और माधुर्य रस, इसमें और रसों के सारे लक्षण के साथ एक और अधिक लक्षण है, निजांग दान, निज अंग दान, मतलब सर्वस्व समर्पण। यह हो गया सर्वधर्मान परित्यज्य। तो और रसों में कुछ तो रिजर्वेशन, कुछ तो अपने पास ही रखते हैं, या पूरा समर्पण नहीं है, कुछ त्रुटि है, कुछ अभी शॉर्टफॉल है। लेकिन ये माधुर्य रस में 100% और निजांग, अपना अंग भी, सर्वांग का दान भी माधुर्य रस में होता है। ये शांत रस के भक्त है। चार कुमार, बड़े सुकुमार चार कुमार है। हरी हरी। वैसे एक समय वह शांत है, मतलब शांत रस से प्रभावित है, फिर जब वैकुंठ गए और वहां उन्होंने वहां का सुगंध, धूप दीप जो अर्पित किया, तुलसी मंजरी का गंध को सूंघ लिया, उसी के साथ वो शांत नहीं रहे, फिर कौन बन गए, दास बन गए, दास से भी आगे बढ़े। उनका उद्धार हुआ, उनकी उन्नति हुई, केवल भगवान को सूंघने से। फिर सौरभ है या गंध है वैसे भगवान का स्वरूप ही सुगंधित है, फिर फूलों में गंध है या कई भी गंध है, वो गंध का स्रोत भगवान का स्वयं का स्वरूप ही है। पृथ्वी पृथ्व्या पुण्यो गंधो पृथ्व्याम च, भगवान का है, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूं। तो भगवान ने इस प्रकार अपना खुद का ही अपने स्वरूप का गंध पृथ्वी में, फिर फूलों में, फिर इसमें उसमें, धूप में, धूप में मतलब अगरबत्ती में या जो भी, अरी अरी, तो उसको सूंघ लिए तो ये शांत रस के भक्त दास भक्ति को अपना या प्राप्त किए। तो ये दास्य रस, वैकुंठ में दास्य रस की प्रधानता है। और वैकुंठ तो वैकुंठ प्लैनेट्स है, वैकुंठ लोक है, कई सारे असंख्य लोक है वैकुंठ लोक। तो वह सर्वत्र दास्य रस की का प्राधान्य है, वहाँ खूब भगवान की स्तुति और गान और आराधना, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु नमस्कार इत्यादि बहुत चलते रहते हैं यहाँ वैकुंठ में दास्य रस दास्य भाव में। अब देखिए, या ये जानने की चीज, समझने की चीज है, यह बात है, सिद्धांत है, यह ये सख्य रस का उदाहरण है। सख्य रस भगवान कहे ही भगवद गीता में अर्जुन से क्या कहे, भक्तोसी में सखा चाहिए थी, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। किंतु अर्जुन और कृष्ण के मध्य का जो रस है, सख्य रस है, सख्य भाव या सख्य संबंध है, ये ऐश्वर्य से मिश्रित है, उसमें ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य ज्ञान है। यह जब विराट रूप देखे, जैसे यहां अर्जुन देख रहे हैं, तो उन्होंने क्षमा याचना मांगना प्रारंभ किया। ओह, मैं तो आपको मित्र मानता था, ऐसा मानता था, ऐसा हम एक ही थाली में भोजन करते थे, एक ही शैया पर लेट जाते थे। ओह, मैं क्या किया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा नहीं 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 आप समझ में आया, आप महान हो, आपके ऐश्वर्य का दर्शन मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्षमस्व क्षमस्व, प्लीज एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए। तो जो सख्य रस है, ऐश्वर्य मिश्रित है। वृंदावन में भी सखा है भगवान के, लेकिन भगवान से कभी वो क्षमा याचना मांगते हैं? तो ये सख्य रस है और ये भी सख्य रस है, किंतु ये सख्य रस कैसा है, इसको तो विश्रम्भ सख्य रस कहा है। विश्रम्भ सख्य रस कैसा, वो ऐश्वर्य मिश्रित था, और ये विश्रम्भ मतलब भेदा भेद, भेद और अभेद, अभेद भेद नहीं, तुम्हें अमीसम, तुम कौन बड़ा लोग, ऐसे भगवान के मित्र वृंदावन में कहे, तुम कौन बड़ा लोग, तुम ही अमीस हम, तुम और हम एक ही है। तो ये सख्य रस, ये सख्य रस है, विश्रम्भ सख्य रस है। तो ये जो विश्रम्भ सख्य रस, ये गौड़ीय वैष्णवों के द्वारा समझा और आस्वादित किया हुआ रस है। तो और संप्रदायों में जो सख्य रस की चर्चा या अनुभव, वो ऐश्वर्य मिश्रित और ये विश्रम्भ मिश्रित या विश्रम्भ भाव वाला रस, सख्य रस। तो इस प्रकार गौड़ीय वैष्णवता की उत्कृष्टता रस विचार से भी सिद्ध की जा रही है। और अभी वात्सल्य रस हम लोग दास्य शांत दास्य भी देखे और अभी सख्य वात्सल्य माधुर्य तीन और भी बचे। तो ये तो विश्रम्भ विश्रम्भ जो या तो विश्रम्भ सख्य ऐश्वर्य सख्य विश्रम्भ वात्सल्य ऐश्वर्य यदि वात्सल्य लाइक दैट और माधुर्य भी विश्रम्भ माधुर्य और ऐश्वर्य माधुर्य। तो ये कारागार में है भगवान प्रकट हुए वसुदेव देवकी तो पुत्र है उनका वात्सल्य रस ऐसा संबंध तो है ही है। भगवान पुत्र बने तो वे पालक है किंतु माता पिता को प्रार्थना कर रहे हैं ना ना पुत्र को प्रार्थना कर रहे हैं आप प्रकृति के परे हो वैसे हो आप वैसे हो तो ये वात्सल्य रस तो है लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य रस है और ये विश्रम्भ वात्सल्य रस है। हरी हरी जय कृष्णा। कुछ गलती किया तो फिर यशोदा पीटती है या तो छड़ी के साथ अभी पहले तो पकड़ेगी फिर को बांधेगी। ये इसे डेली हर रोज का ये सब चलता रहता है गोलोक में गोकुल में। तो ये विश्रम्भ सख्य है या विश्रम्भ वात्सल्य है। वैसे भगवान से माता पिता बड़े हैं ना माता पिता बड़े होते हैं बालक से बच्चे से तो यहाँ यशोदा बड़ी है बाल कृष्ण से नंद बाबा और फिर सभी बुजुर्ग भी जो बुजुर्ग गोपिया गोप है उनका भाव भी ऐसा ही है विश्रम्भ वात्सल्य रस। तो केवल नंद और यशोदा का ही वात्सल्य नहीं है कृष्ण के प्रति वृंदावन का हर गोपी बड़ी गोपिया बड़ी उम्र वाली बुजुर्ग गोपिया और बुजुर्ग एल्डर गोपज उन सभी का विश्रम्भ वात्सल्य रस का भी आस्वादन करते हैं ऐसा अनुभव करते हैं। और ये माधुर्य रस ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य रस वैकुंठ में वैकुंठों में एक वैकुंठ हम कहते तो लगता है कोई एक वचनी एक ही वैकुंठ होगा उसे वैकुंठ तो एक ही है किंतु उस वैकुंठ लोक में कई सारे लोक है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम जो भगवान के अनंत रूप है अनंत विस्तार है एते चांश कला पुंसाम तो वे सारे अंश और अंशांश उनकी अपने अपने लोक है फिर उनकी अपनी अपनी लक्ष्मी भी है। तो कृष्णा बन जाते हैं वे अवतार और राधा बन जाती है लक्ष्मी महालक्ष्मी वैकुंठों में। तो यहाँ ये तो लक्ष्मी और नारायण या विष्णु लक्ष्मी वराह लक्ष्मी और नरसिंह लक्ष्मी, इनके मध्य में जो संबंध है, इनके मध्य में इनके बीच वाला संबंध या रस कौन सा है? माधुर्य, माधुर्य रस है, श्रृंगार रस है, लेकिन ये ऐश्वर्य माधुर्य रस है और ये विश्रम्भ माधुर्य रस है। तो हर वैकुंठ में वैकुंठपति नारायण या नरसिंह या विष्णु या वामन, उनकी अपनी अपनी एक एक लक्ष्मी होती है। हर वैकुंठ में एक एक लक्ष्मी, किंतु वृंदावन में कितनी लक्ष्मियां? लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम, लाखों करोड़ों लक्ष्मियां, महालक्ष्मियां, गोपिया। वैसे उनको लक्ष्मी तो कहा है, लेकिन है वे गोपिया है, लक्ष्मी के स्तर की नहीं है। वैकुंठ में होती है लक्ष्मी, या वैकुंठ की गोपी को कहते हैं लक्ष्मी, और वृंदावन के लक्ष्मी को कहते हैं गोपी। तो वैकुंठ में एक एक लक्ष्मी से प्रसन्न है भगवान, या एक ही लक्ष्मी को प्रसन्न रखते हैं भगवान, लेकिन वृंदावन में कितनी सारी लक्ष्मियों की, गोपियों की आवश्यकता। तब कुछ कृष्ण का समाधान या संतुष्टि होती है। तो यह है विश्रम्भ माधुर्य रस। ओके, लेट अस स्टॉप। तो यह है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की सर्वोत्कृष्टता, रस विचार से उसमें भी विश्रम्भ माधुर्य, विश्रम्भ वात्सल्य, विश्रम्भ सख्य, ये विशेषताएं हैं, ये वैशिष्ट्य है, ये सर्वोत्कृष्टता है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की, जिस संप्रदाय के आप अभी सदस्य बन रहे हो या भक्त बन रहे हो, तो समझ जाओ अपने संप्रदाय को, अपनी परंपरा को भली भांति, और फिर कहोगे, गर्व से कहोगे, हम गौड़ीय वैष्णव हैं। इसके समक्ष तो गर्व से कहो हम हिंदू है कुछ नहीं है, तुच्छ है, हिंदुत्व तुच्छ है, ये उच्च है, सर्वोच्च है। हरी हरी। ओके, सो विल कंटिन्यू, आगे बढ़ेंगे।